रात्रि क्लास चल रहा था, 3/11/1966 पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाबा बाबा करते रहते हैं, फादर फादर करते रहते हैं, और फादर ने ये आकर के समझाया है कि बस मेरे को याद करने से तुम मेरा पूरा वर्षा पा सकते हो, क्योंकि मैं बेहद का फादर हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, और जो दुनिया में फादर होते हैं वो एक जन्म के फादर होते हैं, भले धर्म पिताए हैं, वो भी जीवन रहते तो एक के ही फादर होते हैं, परंतु वर्षा अल्पकाल का ही देते हैं, परंतु मेरे को याद करने से तुम पावन भी बन सकते हो। मेरी याद के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है जो तुम पावन बन सको। तो ये बड़ी बात उनको सुनानी पड़े कि हद के बाप तो बहुत हैं, अगर क्राइस्ट को भी कहें कि 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उसको अपना बाप मानते हैं, फिर भी पांच सौ सात सौ करोड़ का बाप तो नहीं है। बेहद का बाप तो नहीं कहेंगे, बेहद का बाप ये बड़े रहम की बात आकर के बताते हैं कि मुझे याद करोगे तो तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा सकते हो। इसको ही रहम दिल कहा जाता है। तो मेरे को याद करो, मैं देह का बाप नहीं हूं, आत्माओं का बाप हूं, परंतु आत्माओं का बाप होते हुए भी मैं कोई मुकर्रर देहधारी में प्रवेश करता हूं। जो देहधारी आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप कहा जाता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, बीज है, बीज को बाप कहा जाता है। सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का एक ही बाप है। तो सुसाकार में आए हुए मुझे निराकार आत्माओं के बाप को याद करो, इसको ही कहा जाता है रहमदिल। जो ये बात समझाता है, अगर कोई नहीं समझाते हैं कि बेहद का बाप कौन है, और उनकी याद करने से सबकी सदगति हो सकती है, तो न अपने ऊपर रहम करते हैं न दूसरे के ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि मूल बात जो भी है इस सारे ज्ञान की, भले इतना दिन तुम चलो बाप आते हैं 50 वर्ष, इसमें सबसे मूल बात है कि अलफ को याद करो। कब से कब तक, कौन से 50 वर्ष, है 76 से लेकर 2028 तक आते हैं। अट्ठाईस तक क्यों कहा, इसलिए कहा कि बताया ही है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो जरूर पहली कोई एक इकाई है जिससे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 76 से 40 वर्ष अर्थात 2017 तक 2018 तक 40 वर्ष लगते हैं, क्योंकि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं, आत्माओं का बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उस मनुष्य एकमात्र का प्रत्यक्षता वर्ष। जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है, पहले भी मुरली में बताया इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, ये वाणी 66 की है। उस हिसाब से 76 आता है, 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, संपूर्ण वैश्विक ब्राह्मण परिवार ने प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, धूमधाम से मनाया, परंतु बाबा बाबा कहते रहे मालूम किसी को नहीं पड़ा। कि वो कौन सा बाबा है जिसमें बाप आकर प्रत्यक्ष होते हैं। ये वही पुरुषार्थी जीवन है जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा। मुकर्रर रत है, टेम्परेरी नहीं है, जो ब्रह्मा की तरह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की रचना तो करता है, बीच में ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होता है और 1969-18 जनवरी को शरीर छोड़ देता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है। नहीं, इसका तो शास्त्रों में गायन है कि वो सृष्टि पर आजर हमारा विनाशी है, अमरनाथ कहा जाता है। जिस अमरनाथ में अमर बनाने वाला शिव बाप प्रवेश करते हैं, जिसकी याद करने से ही हम सब फेमिलियर होते हैं, अर्थात एक बाप की फैमिली के सब बच्चे बनते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ये समझाने की अति मेहनत दी जाती है कि बाप कौन है। बाबा कहने में बड़ा सहज है, बड़ी सहज बात है, परंतु बताते हैं कि अलफ को याद करो, सिर्फ नुक्ता या बिंदी को याद न करो। बिंदी को अलफ नहीं कहेंगे, बिंदी रखने से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिंदी की वैल्यू कब होती है? जब अंक रखा जाए। तो अव्वल नंबर अंक है अलफ, जो इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर सदैव खड़ा रहता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि शिव के साथ एक शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है और किसी मनुष्य मात्र या देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता। وہی مقرر ہے. اس الف کو یاد کرو. جو پرشارتھ میں کبھی گرتا ہی نہیں, سدیو کھڑا رہتا ہے. اردو بھاشا میں پہلا اکثر ہے الف. تو ایسے باپ کو یاد کرو, بس بات تو تھوڑی ہے پرنتو اسے پہچان کر جان کر نرنتر یاد کرنا بڑی مشکل ہے. ہمارے بہت اچھے اچھے بچے ہیں, وہ پرانے تو پرانے بچے بھی یہ کوشش کر کر کے شیو بابا کو یاد کرتے رہے کہ کم سے کم ہم اس کی 8 گھنٹہ تو یاد کریں. کیونکہ ہم سروس کرتے ہیں وشو کی, اور باپ بھی وشو کی آ کے سروس کرتے ہیں, تب تو وشوناتھ کہے جاتے ہیں. گاتے رہتے ہیں ہر ہر وشوناتھ گنگے. تو وہ بات ہی کٹ گئی. شانتی چاہیے نا سب کو, ساری دنیا میں شانتی ہی شانتی چاہیے. تو شانتی دیوا گایا ہوا ہے, دیوتا گایا ہوا ہے. بھگوان نہیں ہے, پرنتو گایا جاتا ہے دیوتا. دیووں میں بڑا دیو, ساری دنیا میں شانتی کرا دیتا ہے. تو اسے جاننے پہچاننے اور اس میں آئے ہوئے باپ کو یاد کرنا, یہی ایک شانتی کا اپائے ہے. سو آ کر کے باپ سمجھاتے ہیں, کون سا باپ سمجھاتے ہیں, شیو باپ سمجھاتے ہیں, آ کر کے سمجھاتے ہیں. کہاں سے آ کر سمجھاتے ہیں, اونچے تے اونچے دھام پرم دھام سے آ کر سمجھاتے ہیں, جسے سول ورلڈ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں صرف مجھ آتما کو یاد کرو. کیا آتمائیں تو اور بھی ہیں, بندو 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 500-700 کروڑ منشیہ آتمائیں, پشو پکشی کیڑے مکوڑوں کی آتمائیں بھی ہیں, سب بندو ہیں. تو ان بندوؤں کے بیچ میں صرف مجھے کیسے یاد کرو گے؟ ضرور میں اونچے تے اونچے ہوں, اونچا تیرا دھام, اونچا تیرا نام, اونچا تیرا کام. تو اونچے تے اونچے باپ کو ضرور اونچے تے اونچے میں ہی پرویش کرنا چاہیے نا. تو باپ آتے ہیں نرکو نارائن جیسا بنانے. نارائن تو ستیوگ کا آدی کا گایا ہوا ہے, جو ایک ہی ستیہ گایا جاتا ہے, जिसकी घर घर में आज भी भारत में सत्यनारायण की कथा होती है, तो जरूर झूठ की दुनिया से मुकाबला किया होगा। ऐसे थोड़े ही घर घर में कथा होती है। तो बाप आकर समझाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, सब अशांत हैं क्योंकि तमो प्रधान है। जब शांत हो जाते हैं तो सत्व प्रधान बन जाते हैं। वो सारी सृष्टि सत्व प्रधान बन जाती है। शांति भी तो सत्व प्रधान है ना। देखो हर एक मनुष्य, कोई भी साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, बोलते हैं हमें मन की शांति चाहिए, अभी मन की शांति सो आत्मा की शांति। मन चलायमान है या निश्चल है? चलायमान है तो अशांत है या शांत है? भगवान से शांति मांगते हैं तो भगवान आमन होगा कि भगवान को भी मन होगा? हैं? जो आमन होगा वो सदा आमन चैन में रहने वाला होगा कि उसे भी चैन नहीं? तो भगवान तो कहा ही उसे जाता है जिसका मन के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। मन के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाए तो आत्मा की शांति। कहेंगे मन रे आत्मा, ये बात तो वेदों की ऋचाओं में भी लिखी हुई है कि मन ही आत्मा है। परंतु कैसा मन आत्मा है? निश्चल मन या चलायमान मन? मनुष्यों में जो मन होता है वो कैसा होता है? चलायमान होता है। फिर कहते हैं मन जीते जगत जीत। तो देखो आत्मा का तो स्वधर्म ही है शांत, परंतु इन विचारों को मालूम नहीं है कि स्थाई शांति का वर्षा कैसे मिलेगा। वो तो तब ही मिलेगा जो स्थाई शांति में रहने वाला हो। इतनी आत्माएं हैं संसार में, देव आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, राक्षसी आत्माएं, पशु पक्षी कीट पतंगों की आत्माएं, उनमें कौन सी आत्मा है जो इस दुनिया में आकर के भी स्थाई शांति में रहती है? हैं? जरूर सुप्रीम सोल है। तो उसी को याद करने से स्थाई शांति मिलेगी। परंतु उसे पहचानेंगे कैसे कि वो कौन सी ज्योति बिंदु अनुरूप आत्मा है जो गीता में भी बताई है अणु अणियांसम, अणु से अनुरूप है, ज्योति रूप है, रूप तो सब आत्माओं का एक जैसा, तो कैसे पता चले? हैं कि वो कौन है, कहाँ है? हाँ, जब वो स्थाई शांति में आने वाली आत्मा ज्ञान देवे, पहचान देवे, तो सबको जो भी आवे उनको पहले जनावे, बतावे कि तुम जो प्रार्थना करते हो, कोई क्राइस्ट की प्रार्थना करता है, कोई कृष्ण की प्रार्थना करता है, कोई राम की करता है, कोई किसकी करता है, कोई भारत माता की करता है। आजकल तो भारत माता की बहुत ही प्रार्थना करते हैं, गली गली में बोलते हैं भारत माता की जय। अभी भारत माता की जिसको वो समझते हैं, भारत माता वो जड़ जमीन को समझते हैं कि कोई चैतन्य को समझते हैं? अभी वो तो तत्व है, तत्व की जय। ये तो पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये तो पंचभूत हैं। तो भूतों की पूजा करते हैं, ये भी प्रार्थना भूत की करते हैं। प्रार्थना पृथ्वी माता की थोड़े ही करनी है, है? पृथ्वी माता में और भारत माता में कोई अंतर है? है? क्या अंतर है?
है? देवताओं का राक्षसों का सबका माता है पृथ्वी।
भारत माता भी उनसे पूछो जो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता भी जड़ जमीन और पृथ्वी भी सारी जड़ जमीन। तो जय किसकी? जय जड़ की होती है, विजय कहो हार कहो, ये जड़ की होती है या चैतन्य की होती है? तो पृथ्वी माता की जय थोड़े ही करनी है। उनको ये मालूम नहीं है कि पृथ्वी माताएं ये हैं। कौन है? कन्याएं माताएं, उनमें से उन कन्या माताओं के बीच में, क्योंकि कन्या माताओं तो बहुत हैं, उनकी कोई मुखिया भी होगी ना, जिन्होंने बैठ करके याद के बल से इस भारत को शांति बनाया है, सुखी बनाया है। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि किसकी याद से सुखी बनाया है भारत माता को, किसी को मालूम नहीं। नाम तो बहुत देते हैं देवियों का, परंतु देवियां ऐसी ऐसी बनाई हैं, वंडरफुल देवियां बनाई हैं। कहते हैं मां गौरी एकदम गोरी, कहते हैं महाकाली एकदम काली, अरे काली है तो जरूर काले मुंह वाली है। काला मुंह करने वाले को कहते हैं काला मुंह किया, और गोरी है तो जरूर काला मुंह तो नहीं किया होगा ना। गोरा मुंह होता ही तब है जब पवित्रता धारण की है। अपवित्र होते हैं, विविचारी होते हैं तो कहते हैं कलमुआ, काला मुंह करके आई। नाम बहुत दिए हैं देवियों के, परंतु जानते नहीं है नाम का आधार क्या है। जैसा काम वैसा नाम। काला काम किया तो वैसा नाम, काली देवी। गोरे काम किए तो महागौरी। तो देखो ऐसी ऐसी देवियां बनाई हैं वंडरफुल। इनके जो नाम दिए हैं, रूप दिए हैं, वंडर तो लगता है। ये काली का जो चित्र बनाया है कलकत्ते में, खास चित्र कहाँ बनाते हैं? काली कलकत्ते वाली। यानी कि कलकत्ते में कितनी महिमा है। कलकत्ते में ही क्यों महिमा है इतनी है? दुनिया में और कोई शहर भी होना चाहिए ना, वहां क्या काले मुंह वाली नहीं होती हैं? काले कर्म करने वाली नहीं होती हैं? हाँ, कलकत्ता ही एक शहर है हिस्ट्री में जहाँ वैश्यावृत्ति बहुत होती है। काली माता कर करके, माँ 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 कह करके बंगाली लोग बहुत याद करते हैं, परंतु शिकल ऐसी भयंकर बनाई है। परंतु माता तो ऐसी भयंकर हो ही नहीं सकती। माता किसकी होती है? बच्चों की। बच्चों के लिए माता ऐसी भयंकर हो सकती है क्या? माता ऐसी कैसे हो सकती है बच्चों के लिए? 3/11/66 की वाणी का दूसरा पेज। अगर माता के ऐसे बच्चे निकले तो सभी ऐसे ही भयंकर निकले? कितनी काली है और जीभ निकली हुई है इतनी। माता जिसको कहा जाता है तो माता का तो रूप तो ऐसा होना चाहिए ना। किस तरफ इशारा किया है? लक्ष्मी की तरफ इशारा किया। माता का रूप तो ऐसा सौम्य होना चाहिए ना। तो वो पत्थर बुद्धि है। बाप कहते हैं कितनी भला अक्ल ही अभी मालूम पड़ता है। हम खुद भी कहते हैं हम जाते थे रुपया रुपया दो रुपया देते थे अंदर जाकर के घुस करके अभी हम समझते हैं कि ये कितनी बेवकूफी है क्या है कि काले कर्म करने वाली ऐसी कलमुही को दान दक्षिणा देना कितनी बेवकूफी। अरे ऐसी माता हो कैसे सकती है भला। हाँ यूं जगदम्बा जगदम्बा भी कोई एक होगी सारे जगत की अम्बा, नहीं तो इतना बड़ा सारा जगत आया कहाँ से जिसमें इतने अनेक धर्म वाले बच्चे हैं। देवता धर्म के जो हिंदू कहे जाते हैं क्षत्रिय धर्म के इस्लाम धर्म के बौद्ध क्रिश्चियन आदि कितने बच्चे हैं जैसे जगत गुरु अनेक होते हैं तैसे जगदम्बाओं का भी चित्र अनेक होने चाहिए। एक विविचारिणी बनी होगी कि अनेकों बनी होंगी है? भगवान की रचना किसे कहें है? भगवान आवेगा तो गोरा बनावेगा पावन बनावेगा या पतित रचना करेगा? तो ये अनेक धर्म इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन वगैरह 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 ये सब विविचार में ले जाने वाले धर्म हैं। विधर्मी विदेशी या अभिविचारी धर्म है तो इनकी अम्बा इनकी भी विविचारी बनाने की शुरुआत कोई अम्बा ने तो की होगी कि अपने आप विविचारी बन गए। तो देखो ये विविचारी दुनिया बनाने वाली जगदम्बाओं की संख्या अनेक है। कहाँ देखो यहाँ बॉम्बे में जाओ कौन सी देवी मुंबा देवी। अभी उनकी शक्ल तो ऐसी नहीं है काली माँ तो जगदम्बा और वो जगदम्बा तो एक होनी चाहिए ना। तो ये देखो और होनी चाहिए मनुष्य उनमें दो बाहें काली दो मोहों वाली होनी चाहिए दो बाहों वाली होनी चाहिए। दूसरी तो माता कभी चार बाहों वाली अनेक भुजाओं वाली हो ही नहीं सकती है। मनुष्य की माता मनुष्य दो हाथों वाला तो उसकी माता भी दो हाथों वाली और चित्र तो देखें कैसे वंडरफुल निकाले हैं। कई तो बड़ी भयंकर शक्तियां निकाली हैं तो वो बाबा कहते हैं साहब बिचारे मरे मुझे हुए है एकदम, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं। ये बेसमझ देखने में तो मनुष्य आते हैं परंतु हैं बंदर से भी बदतर। इनका नाम भी रखा हुआ है, इस दुनिया का नाम भी रखा हुआ है, कांटों की दुनिया, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। देखो इसको कहते हैं, खुद मनुष्य कहते हैं कि यह फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स जंगल है। कौन सी दुनिया है? द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया, जहां दो दो धर्म होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो कुल होते हैं, दो दो मतें होती है, दो दो भाषाएं होती है, दो से चार, चार से आठ, अनेक मत होते जाते हैं। तो ये है कांटों का जंगल, और वो सतयुग त्रेता क्या है? गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह का बगीचा, भगवान का। ये देखो देखने में भी मनुष्य ही मनुष्य आते हैं, मनुष्यों के सिवाय कोई दूसरा हो भी नहीं सकता है। कोई नाक वाला मनुष्य सिर्फ, कोई पूंछ वाला बंदर हो ही नहीं सकता है, मतलब मनुष्य माने मनुष्य होता है कोई। तो देखो ये देवी देवताओं को कैसा बनाई दिया है, कोई पूंछ वाला, कोई नाक सूंड वाला, और देवियां भी देखो कैसी कैसी बनाई हुई, और फिर उनकी कितनी पूजाएं होती हैं, हैं? पूजाएं लंबी नाक वाले हाथी की होती है क्या? लंबी पूंछ वाले बंदर की पूजा होनी चाहिए? सुअर की पूजा कहीं देगी है? शुक्र अवतार मानते हैं कि नहीं भगवान का? कितनी पूजाएं हैं, घोड़े का अवतार कितना हंगामा है, मछली का अवतार, और फिर समझाओ तो कुछ समझते ही नहीं है। बस हाँ हाँ अच्छा अच्छा करते हैं। तो बाबा कहते हैं और कुछ भी नहीं, प्रदर्शनी में भी सिर्फ ये ही समझाओ कि भगवान एक है, ये पूंछड़ी वाला भगवान, ये लंबी नाक वाला भगवान, ये काले मुंह वाला भगवान, ये अनेक प्रकार के भगवान नहीं हो सकते, और वो एक भगवान ही कहते हैं मुझे याद करो। जो एक ही बात सुनाते हैं वो एक ही सत्य है, और बाकी सब झूठ है। गाते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, truth is God. और सत्य एक ही होता है, सत्य अनेक प्रकार के नहीं होते, क्योंकि मुझे ही पतित पावन कहते हो तो मुझे याद करो, मुझे याद करेंगे तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। शिव को तो, निराकार को तो सब कोई जानते हैं। क्या कहा, इस्लामी भी, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सन्यासी भी निराकार को मानते हैं, सिख भी एक ओंकार निरंकार को मानते हैं, आर्य समाज भी निराकार को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते। पर शिव को बाबा समझ करके, बाबा जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है, ऐसे शिव बाबा को याद करते रहो तो बाबा की गारंटी है कि तुम जरूर पावन बन जाएंगे। माना शिव हमारा ग्रैंडफादर है तो उस ग्रैंडफादर का कोई बच्चा भी होगा, एक ही बच्चा होगा, एक बाप ऊंचते ऊंच, तो उसका ऊंचते ऊंच एक ही बच्चा। कहते भी है त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः, फिर महादेव किसे कहते हैं, देवदेव, ब्रह्मादेव, विष्णु देव, शंकर महादेव। तो जो ऊंचते ऊंचे देवता है, भगवान आकर के नर अर्जुन को नारायण बनाने का ज्ञान देते हैं ना, कहते हैं गीता ज्ञान जो नर को नारायण बनाने वाला ज्ञान है वो भगवान ने यादव कौरव पांडव सबके बीच दिया, माने सारी दुनिया के बीच गीता ज्ञान दिया गया। तो पढ़ाई पढ़ने वाले अनेक हुए या थोड़े हुए, और उन अनेक पढ़ाई पढ़ने वालों में कोई एक अव्वल नंबर भी तो होगा ना। तो जो अव्वल नंबर है उसके लिए मुसलमान भी गाते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह आकर के क्या करते हैं, उस एक के द्वारा ही अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे और धर्म पिताएं सब निराकारी स्टेज वाले होते हैं, बुद्ध को देखो चेहरे को ध्यान से देखो, क्राइस्ट को देखो ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, चेहरे को देखने से ही निराकारी स्टेज देखने में आती है या साकारी स्टेज देखने में आती है। जैसे इस संसार में है ही नहीं, आत्मा ऐसे दुनिया से परे हो गई तो अपने अपने धर्म में वो अव्वल नंबर है। उनके सिवाय उस धर्म में कोई और अव्वल नंबर है क्या? तो ऐसे ही सारी दुनिया में कोई अव्वल नंबर होगा ना, उस अव्वल नंबर के द्वारा ही अव्वल नंबर धर्म स्थापन करते हैं, जिसे अलफ कहा जाता है। तो उस एक की पहचान देने के लिए, एक को याद करने के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, तो ये सब के ऊपर कृपा करनी चाहिए। सबके माने हैं, सबके माने कितने के ऊपर, जो भी 500-700 करोड़ हैं, सबके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो क्या करते हैं है? क्राइस्ट ने 200-250 के ऊपर, 200-250 करोड़ के ऊपर कृपा की। हर धर्म पिता अपने ग्रुप के ऊपर ही कृपा करता है, यह 500-700 करोड़ के ऊपर कृपा करता है, है? अपने धर्म के ऊपर ही कृपा। और उन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, उनमें कोई कोई बड़े महत्वाकांक्षी हुए हैं, जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लें, कंट्रोल में कर लें। तो क्या कर सके है? नहीं कर सके। तो न उन धर्म पिताओं में इतनी ताकत है कि सारी वसुधा को, सारी पृथ्वी को अपने कंट्रोल में कर सके। ये तो एक में ही ताकत है, और वो ताकत भी कहां से मिलती है, जिसे एक भगवान कहा जाता है, एक सद्गुरु निराकार। सभी आत्माओं का बाप है, जो सुप्रीम टीचर बनकर इस सृष्टि पर आता है, सुप्रीम मनुष्य तन में आता है। तो जो भी टीचर आवे, फलाने आए, टीरे आए, पहले तो उनको अच्छा कुछ भी नहीं समझते हो, हम कह देते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पति से पावन बन करके, और अभी तुम पावन बन गए संगम युग में, तोड़ जाएंगे अपने शांति धाम सोल वर्ल्ड में, आत्मलोक में। जिस आत्मलोक से तुम आए हो, वहां वापस चले जाएंगे, और फिर इस पुरानी दुनिया में, दुखदाई दुनिया में तुम लौट कर कभी नहीं आवेंगे। अगर नहीं उड़ सकते हो, तुम याद में नहीं ऊपर उड़ सकते हो, क्योंकि पतित हो, आत्मा पतित है, इसलिए नहीं जा सकती है, इसीलिए तो बुलाती है पतित को, पावन बनाओ, तोड़ जावे घर की ओर, मुक्ति धाम चले जावे। तो ये बात जो मोस्ट सिंपल है, अगर कुछ भी कोई नहीं समझा सकते हैं, तो जो भी आवे यहाँ, बहुत भी देखो टीचर से स्कूल के बच्चे आते तो हैं, तो बुलाने चाहिए, ले आओ, और कुछ भी नहीं, उनके नर्स को बोलो, और कितना तुमको समझाएं, समझने का तो टाइम चाहिए, ये बच्चे तो नहीं समझ सकेंगे, बाकी अभी तो अंत है सारी दुनिया का, अंत की निशानी क्या है? अरे अंत की निशानी है कि जब इस सृष्टि का महामृत्यु होने वाला होता है, सामान्य मृत्यु तो रोज रोज होती ही रहती है, लेकिन महामृत्यु जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि की मृत्यु हो जाती है, ऐसी महामृत्यु की निशानी है, शास्त्रों में भी बोला है कि महाभारत विश्व युद्ध हुआ, कितने पांडव बचे? 5 पांडव उंगलियों पर गिनने योग्य बचे। उस तृतीय विश्व युद्ध में भी सारी दुनिया का अंत नहीं हुआ, फिर बाद में एक और विश्व युद्ध हुआ यादवों का, कहते हैं उन यादवों के पेट से मूसल निकले, अब मुंगसल थोड़े ही निकले लोहे के, ये तो बुद्धि रूपी पेट है जिसमें से मिसाइल्स निकलते हैं, एटम बम निकलते हैं, बुद्धि रूपी पेट से तैयार होते हैं और उन बम से सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। भगवान आते हैं तो करते ही दो खास काम है, अपनी दो मूर्तियों के द्वारा ये दो काम करते हैं, एक ब्राह्मणों की, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं उनकी स्थापना, ब्राह्मण देव कहा जाता है, आज भी ब्राह्मणों की पूजा होती है यादगार में। फिर उन ब्राह्मणों का पालना तो तभी हो सके, स्थायित्व तो तभी हो सके जब उन मुट्ठी भर ब्राह्मणों के अलावा जो ये सारी दुनिया में ढेर के ढेर असुर फैले हुए हैं उन असुरों का विनाश हो जाए। जब तक उनका विनाश नहीं होगा तब तक इस सारी सृष्टि में वातावरण जो वाइब्रेशन है वो दूषित होता रहेगा या सुधरता रहेगा? दूषित होता रहेगा। तो उन सब दुष्टों की दुनिया का जो वातावरण को, वाइब्रेशन को खराब करने वाले हैं, मुट्ठी भर योग बल वाले बच्चों का जो पुरुषार्थ है श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनाने का, वो बनने ही नहीं देते, तो उन सब का विनाश हो जाता है एटमिक एनर्जी से। एटम बम फटते हैं, सारी पृथ्वी डोलायमान हो जाती है, और जब पृथ्वी मुख्य ग्रह डोलायमान होता है तो सभी ग्रह आपस में टकराते हैं, डोलायमान हो जाते हैं और सारी सृष्टि का विनाश होता है। योग बल वाले वो बच्चे जो संगठित हो करके एक स्थान पर एक लिमिटेड वायुमंडल का निर्माण करते हैं, वाइब्रेशन बनाते हैं, वो सुरक्षित रह जाता है, बाकी सारी दुनिया का ध्वंस हो जाता है। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि हिरण्यकश्यप का भ्राता हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को कहां ले गया? एकदम गड्ढे में, पाताल में ले गया, परंतु सारी पृथ्वी पाताल में चली गई या उसका कुछ हिस्सा बच गया? है काशी नगरी बची। तो जैसे भारत माता कोई माता का नाम है जिसके आधार पर भारत माता कही जाती है, कहे मेरत भा माने ज्ञान की रोशनी, मेरत ज्ञान की रोशनी में प्रैक्टिकल जीवन में रत रहती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान माने सत्य, सत्य की जानकारी ज्ञान या झूठ की जानकारी ज्ञान? सत्य की जानकारी के ज्ञान। तो सत्य क्या है? मनुष्य के जीवन में सत्य क्या है? मनुष्य के जीवन में वो सत्य क्या है जो मनुष्य सत्य को धारण ही नहीं कर पाता? सत्य कहो, सत्व कहो, सत्य कहो, सदाकाल धारण नहीं कर पाता है। आत्मिक स्थिति की बात छोड़ दो, वो तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तब ही आत्मिक स्थिति बनती है, लेकिन मनुष्य के अंदर, देवात्माओं के अंदर वो सत्व पहले से ही होता है। जिस सत्व को धारण करने से ये सृष्टि बहुत तीव्र गति से नीचे नहीं उतरती है, 2500 साल तक फिर भी स्थिरियम रहती है। हाँ, प्योरिटी, पवित्रता, जिसे सत्य कहा जाता है, जिसे आज मनुष्यों की भाषा में, मनुष्यों में वीर्य कहा जाता है, वो धारण करके रहता है या निष्खलित होता रहता है, है स्खलित होता रहता है। तो ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्व है, जो मनुष्य धारण नहीं कर पाता। इसे धारण करने की प्रक्रिया भगवान ही आकर के सिखाते हैं, परंतु उसे धारण करने में नंबर वार निकलते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ाई पढ़ने वाले, कि सब एक जैसे हो जाते हैं। जो अव्वल नंबर निकलता है वो अमोघ वीर्य कहा जाता है, वो अमोघ वीर्य भगवान का साकार रूप माना जाता है। बाकी तो संसार में झूठों ने आकर के अनेक भगवान के रूप बनाए दिए, यहां तक कि हर आत्मा सो परमात्मा बन गई। तो ऐसी स्टेज जब झूठों की दुनिया की आ जाती है तो निशानी है, एक तरफ भगवान आते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भी एक मूर्ति तैयार होती है, जिस मूर्ति के नाम के आगे उस शब्द लगाते हैं, हर हर बम बम। जैसे जैसे बम फूटते जाएंगे वैसे वैसे पापों का हरण होता जाएगा। तो ये निशानी है एटम बम कि अब दुनिया का अंत है। आज से 78-80 साल पहले एटम बम का निशान, नाम निशान नहीं था। जब भगवान आते हैं इस सृष्टि पर तो एटमिक एनर्जी भी तैयार होती है। पहला विस्फोट हुआ था कहां? हिरोशिमा नागासाकी पर, कौन से सन में है? 45 में। वो तो छोटी छोटी बम्बियां थी 20-20 मेगावाट की, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के एटमिक एनर्जी अनेक देशों के पास तैयार हुई पड़ी है। परंतु उन तैयार करने वालों में, बनाने वालों में, वैज्ञानिकों में एक में भी ऐसी शक्ति हिम्मत नहीं है जो उनका विस्फोट कर सके। वो डरते हैं कि हम विस्फोट करेंगे तो दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे और ये दुनिया में तृतीय चतुर्थ विश्वयुद्ध हो सकता है जिसमें हम भी खलास हो जाएंगे और सारी दुनिया खलास हो जाएगी। मौत से तो सबको डर लगता है, वो एक ही है जिसकी मौत इस सृष्टि में कभी होती ही नहीं, वो भारत में गाया जाता है। कौन है? एक ही शंकर महादेव है जिसकी मृत्यु भी नहीं होती, जिसका जन्म भी नहीं होता। तो ये उसी की हिम्मत है कि जो उन कमजोर दिमाग वाले वैज्ञानिकों में, कमजोर किस लिए कहा, कि एटमिक एनर्जी बनाए तो लेते हैं लेकिन उसका विस्फोट करने की ताकत नहीं, उनमें प्रवेश करके वो एटमिक एनर्जी को फुड़वाए देते हैं और सारी दुनिया का विनाश होता है, सब पतितों का खलासा, पति शरीर ही खलास और अविनाशी आत्मा ऊपर उड़ जाती है। तो अभी बाकी सभी का अंत है, सीढ़ी में भी अच्छी समझानी है, अभी 84 के चक्र का अंत है, 84 जन्म पूरे होते हैं, ये अंतिम जन्म तमो प्रधान है। कैसा तमो प्रधान है, उस व्यक्ति को जो जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को तोड़ रहा है, काट रहा है, तो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है। मनुष्य बहुत गुस्से में आता है तो अपने घर के बर्तन ही फोड़ना शुरू कर देता, फोड़ देता है। तो ऊपर में है सतो प्रधान, इस सच्चे रूपी वृक्ष के ऊपर कौन बैठा है, है शंकर को बैठाया हुआ दिखाया गया। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं ऊपर परमधाम आत्मलोक में जा रही है, बीजने वाला निमित्त कौन बैठा हुआ है, जो सब को खींच खींच करके ऊपर भेज रहा है। तो वो ऊपर में है सतो प्रधान, नीचे सब है तमो प्रधान। ये सारा भारत कभी सतो प्रधान था, देखो क्या था, अभी तमो प्रधान बना है तो क्या है, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। मूल बात ये है, तो बस बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी याद करने का चार्ट रखो, और बाबा ने कहा है अभी नांत समय होगा, तभी तो हमको कम से कम तुमको 8 घंटा याद रखना है। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि 24 घंटे याद करो, क्या कितना याद करो, 8 घंटा शरीर की परवरिश में दो, 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो और 8 घंटा है याद में रहो। शरीर की परवरिश माने अपने भले धंधा दोरी करो, कम से कम 4 घंटा तुम कर्म करो, धंधा दोरी पेट के लिए जरूर करो। क्या क्या करो, पेट के लिए धंधा दोरी जरूर करो। कोई कहे कि चलो धंधा दोरी पेट के लिए हम तो करें, फिर जो सरेंडर हो जाते हैं वो तो पेट के लिए कोई धंधा दोरी नहीं करते, अपने पेट के लिए करते हैं, हैं? वो अपने पेट के लिए कोई धंधा दोरी कोई नौकरी चाकरी करते हैं क्या, हैं? नहीं, उनके लिए भी बोला जो बैठे बैठे खाएंगे तो उनका बनेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ जाएगा कि आखरीन छोड़ के भागना पड़ेगा बाहर की दुनिया में। तो जो यज्ञ छोड़ करके जाते हैं सरेंडर होने के बाद, उनकी क्या गति होती है? है दुर्गति हुई या सदगति हुई? जो भगवान के घर में भी नहीं से आराम से रह सके, वो बाहर की दुनिया में आराम से रह सकेंगे? तो बाप कहते हैं, भले तुम 8 घंटा आराम करो, 8 घंटे धंधा धोरी करो, 8 घंटा कहां से भी निकाल कर करके जमा करते जाओ, बाप को याद करते जाओ, तो तुम्हारा ये जो तमो प्रधान शरीर बन गया है, आत्मा तमो प्रधान बन गई है, वो सतो प्रधान बन जावे। सतो प्रधान बन जाएगा तो उड़ेगा यहां से, यहां तुम रह नहीं सकेंगे। ये शरीर भी सात्विक बनेगा तो सूक्ष्म शरीर में जैसे 3 देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, वैसे तुम भी सूक्ष्म वतनवासी होकर रहेंगे। मन शरीर भी फरिश्ता बनेगा, फिर फर्श की दुनिया से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तुम यहां रह ही नहीं सकेंगे। तुम माने कौन? आत्मा, सत्य प्रधान आत्मा बने ना, तो ऑटोमेटिकली कशिश होगी उनको, कहां की है कशिश माने खींच, कहां की खींच होगी है, सत्य धाम की या झूठ धाम की है? सत्य धाम में जाने की खींच होगी। अट निकल गई तो ये भागा अपने घर, बिल्कुल इस तामसी दुनिया में ठहर नहीं सकेंगे। तो ये अभी देखते हो ना, बरोबर सतो प्रधान बनेंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कैसी अवस्था हो जाएगी? कर्म अतीत। ये क्या होता है कि कर्मेंद्रियों से, कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहेंगे, फिर भी कर्मेंद्रियों के कर्म से उसके फल से अतीत चले जाएंगे। कर्मेंद्रियों का फल मिलेगा ही नहीं, पाप कर्म का भी कोई असर नहीं और पुण्य कर्म का भी कोई फल नहीं, ऐसी स्टेज बन जाएगी। जिस संपन्नता की 100% स्टेज के लिए बोला है मुरली में, मैं विनाश ऐसे से कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। गीता में भी लिखा है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगेगा। तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो भाग जाएंगे अपने आत्मलोक में, ये इसमें रहेंगे ही नहीं तामसी शरीर और तामसी दुनिया में। इसीलिए तो हम पुरुषार्थ करते हैं। क्या कहा? हम ये जो आत्मा और परमपिता परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हमारा इस दुनिया से, इस तमो प्रधान शरीर से छुटकारा हो जाए। इतना सतो प्रधान बन जाएंगे और हम चले जाएंगे। ओम शांति।